राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 मई 1993 लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
सुबह स्वामी जी आपने कहा कि लास्ट में कहा था चुप हो जाए, तो पानी से चुप होने के अभिप्राय है या वृत्तियों से?
वृत्तियों भूत मन से सर्वता तो मन वाणी शरीर सब भीतर से एकदम कोई संकल्प नहीं करे उसी आदमी करे।
क्या स्वरूप की तरफ लक्ष्य करे तो कौन है? क्या स्वरूप की तरफ लक्ष्य
न ना बिल्कुल नहीं। स्वरूप तरफ लक्ष्य करे तो मैं कहे नहीं सुप तो उसमें रहना है जिसमें हलचल होती है जिसमें संतुलता होती है उसमें रहना है। स्वरूप में संतुलता ही नहीं। सुप होना तो वहां जहाँ हल्ला मचे वहां सुप रहो भाई। जहाँ हल्ला है ही नहीं चुप क्या गए वहां। स्वरूप में हल्ला है ही नहीं। देखो स्वरूप का लक्ष्य करना स्वरूप का चिंतन करना ये जड़ता से सहायता लेना है। और जड़ता से सहायता लेगा वो जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। शंका करो
साधन से
स्वरूप
में स्थिति
है स्वरूप में हो जाएगी। ये हल्ला नहीं तो पता नहीं लगता। एक ब्रह्मचारी का पिता गया उस ब्रह्मचर्य आश्रम में पुत्र से मिलने के लिए, तो वे सभी बालक वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ में उसका लड़का भी पढ़ रहा था थाई सम्मिलित, परंतु ऐसी ध्वनि आ रही थी जिसमें वो अपने बच्चे की ध्वनि को समझ नहीं सका कि ये मेरे बच्चे की ध्वनि है। पता ही चलेगा ऐसे ये हल्ला हो रहा है मन का बुद्धि का इंद्रियों का और सबका सब। उसमें आत्म तत्व तो है परंतु आत्म तत्व की आवाज को फर्क ही नहीं था। हल्ले में मिट गई तो हल्ले में मिली जुगी। इस वास्ते सब तक चुप हो जाएगा तो आप सब प्राप्ति हो जाएगी। ये बात चिंतन करोगे तो सहायता लेनी पड़ेगी। मन की बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। शरीर को खड़ गए उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। जो जड़ की सहायता लेने वाला जड़ का त्याग कैसे करेगा? जड़ की सहायता नहीं लेनी है। जड़ से संबंध विच्छेद करना है। जिससे संबंध विच्छेद करना है उसकी सहायता रख कैसे गाऊंगा? इसमें शंका होती हो वो बात हो विचार करने उस पर। विचार करने से विषय बहुत विशद होता है। स्वच्छ से निर्मल हो जाता है, समझ ठीक समझ में आ जाता। वादे वादे जाए थे तत्व बोधा, नारायण 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 नारायण।
चिंतन करते करते क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि चिंतन से ऊपर उठ जाए? चिंतन से
होगी, हो सकती है, समय बहुत लगेगा, होगी हो सकती है। उद्देश्य तो चिंतन का है नहीं, उसका चिंतन वृत्ति का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य परमात्मा का ही है। पर बहुत दूर तक जड़ का साथ रहेगी,
पर मैं की सत्ता रहेगी
ना, सब शुरू की सत्ता रहेगी, मैं नहीं रहेगा। देखो कोई भी क्रिया करो, शरीर से करो, वाणी से करो, मन से करो, क्रिया करने से कर्तृत्व रहता है, और कर्तृत्व रहने से क्रिया होती है, और कर्तृत्व मान का नाम ही अहंकार है, कर्तृत्व के अभिमान कोई। तो क्रिया करने में कर्तृत्व नष्ट नहीं होता, क्रिया करो चाहे क्रिया शुभ हो। जैसे समाधि में क्रिया नहीं होती, पर समाधि के लिए प्रयत्न किया जाता है उसमें क्रिया होती है। तो समाधि में निष्क्रियता है, निष्क्रियता भी क्रिया है। जैसे कल कहा था ना, प्रलय में भी क्रिया है, सुषुप्ति में भी क्रिया है, ऐसे समाधि में भी क्रिया है, वो एकाग्रता परिणाम है, निरोध परिणाम है, ऐसे योग दर्शन सब लिखा है। सहज अवस्था में क्रिया नहीं है, स्वतः स्वरूप में क्रिया नहीं है। जिसमें व्युत्थान होता है, तो व्युत्थान होता है वो समाधि निरंतर कैसे रहेगी? तो क्रिया निरंतर रहती ही नहीं, क्रिया का आदि और अंत होता है, वस्तु का उत्पन्न होना नष्ट होना होता है, वस्तु और क्रिया एक रूप नहीं रहते। समाधि नाम कहते हैं उसको, तो अवस्था भी कहते हैं, पर अवस्था है ना, वो समाधि है, वो तो सहज है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक आकाश है, उसमें क्या क्रिया है? सतह के आकाश है, उसमें क्या क्रिया है? क्रिया होती है, जितनी वर्षा की होती है, बदलाव की होती है, बिजली चमकती है, गर्जना होती है, सब हो जाते हैं तो आकाश रहता है, सब मर जाते हैं आकाश में। आकाश में कोई क्रिया ही नहीं, क्रिया आकाश के अंतर्गत होती है, ऐसे स्वरूप के अंदर तो सब होता है, स्वरूप में कोई क्रिया नहीं, स्वतः सिद्ध है जो आत्मा। निर्विकल वृत्ति है, निर्विकल दो का नाम कहते हैं, जो निर्विकल वृत्ति है वो समाधि है, और निर्विकल बोध है वो तत्व है। क्या कहे? हाँ बिल्कुल क्रिया है। तो चुप रहना मात्र नहीं है, चुप रहने के बाद स्वतः तत्व रहेगा वो तत्व है। चुप रहना भी क्रिया है, दोनों क्रिया ही है, कर्म करो अकर्म हो एक ही बात है। चुप कैसे रहे?
ऐसा कौन सा चुप रहना है जिसमें क्रिया नहीं होती?
वो तो स्वरूप ही है। नारायण 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 तो इस विषय में कुछ बोले नहीं, इस विषय में कुछ बोले राम राम राम। पहले सिद्धांत से ये बात मान लेनी चाहिए कि तत्व निष्क्रिय है, ये पहले मान लेनी चाहिए मान्यता, उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया उसी में होती है जो चीज नाशवान होती है, और क्रिया होगी वो चीज नाशवान होगी, उसकी उत्पत्ति और विनाश होगा, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होगी। कोई क्रिया करो और कोई पदार्थ हो, पदार्थ मात्र उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं, क्रिया मात्र आरंभ और समाप्त होने वाली होती है, ये नियम है। तो तत्व है वो ना उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, वो है जो गति में रहता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए हम क्या करें कैसे करें, तो मैं तो यही बात बताता हूँ सुबह शाम दोपहर में जो पूछे जब, और मेरे को मगर मैं भी ऐसे कहता हूँ पूछे तो मेरे बहुत मदद मिल जाती है। आप पूछ लेते हैं शंका कर लेते हैं तो मेरे को कहने के लिए सहायता मिल जाती है, मदद मिलती है मेरे पर, मैं उपकार मानता हूँ, आपका एहसान मानता हूँ कि जो आप इस विषय में गहरे उतर करके पूछे, उसे मेरे आपके दुनिया के सबके लाभ होता है। और तो मैं तो कम से कम उपकार मानता ही हूँ आपकी, आप जाने। गीता में आया है शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत। शनै शनै उपरमेत, पहले संकल्प प्रवान कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः, संकल्प से पैदा होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग करे, किसी कामना को न रखे, अशेषतः साफ सच निर्मल कर दे कामनाओं के विरुद्ध, कामान यह समान से निष्क्रिय इस तरह। तो संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, फिर
मन से ही
इंद्रिय ग्राम विनियम समान्त, मन से ही इंद्रिय समूह को भी विनियम नियमन कर रही, इनको भी सुख कर रही। इसके बाद सदै सदै उपरमेत, स्वयं धीरे धीरे उपरम हो जाए। एक त्याग होता है चुप रहना होता है, एक उपरति होती है। उपरति में न क्रिया से मतलब है न क्रिया से मतलब है, उससे अपने मतलब ही नहीं। देखो ध्यान देने की बात है, अगर हम चाहते हैं तो हमारे में हलचल होगी, नहीं चाहते हैं तो हलचल होगी, अगर उपराम हो गए तो हलचल नहीं होगी। ये पहले विषय समझ रहे हैं अपने, वो तो बता रहा हूँ अभी, परंतु एक बीच में बात बताई कि आप क्रियाशील हो तो भी हलचल होगी, अक्रिय होंगे तो भी हलचल होगी। और दो बात पहले बताई कि पदार्थ मात्र जितना है उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, और क्रिया मात्र कितनी ऊंची कान हो उसका आरंभ और अंत होता है, तत्व का आरंभ और अंत नहीं होता है, ये कायदा है। इसमें सुंदर शंका तो बोलो, वो तो बता रहा हूँ अभी। पहले भूमिका है, देखो महल उठे जो थिर हुए थम्भा, थम्भा थिर महल किसने उठेगा, तो ये थंबा लगाया हमने पहले, अब हमारा मैल उठेगा, इसके ऊपर बातें होगी। पहले ये तो ध्यान लगना चाहिए कि पदार्थ और क्रिया ये दो प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से ही पदार्थ पैदा होते हैं, प्रकृति से ही क्रिया होती है। तो प्रकृति से अतीत में न क्रिया है न पदार्थ है। यदा ही नेन्द्रियासु न कर्मसु अनुसर्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। योग जो कर्म योग है अथवा ध्यान योग, योगारूढ़ अवस्था होती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न तो इंद्रियों के अर्थों में पदार्थों में राग होता है, न कर्मसु न क्रियाओं में आसक्ति होती है, तब योगारूढ़ होता है। क्रिया में अक्रिया में आसक्ति होगी, आग्रह होगा, तो योगारूढ़ नहीं होगा। पदार्थों में आसक्ति राग होगा तो योगारूढ़ नहीं होगा। भीतर में कोई संकल्प रहेगा तो योगारूढ़ नहीं होगा। इस बात तीन बात बताई योगारूढ़ होने के लिए। इससे पहला कहा आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए क्रिया कारण है। मानो क्रियाओं से सहायता मिलने से योगारूढ़ होता है, तो पहले क्रिया होती है, साधन करना पड़ता है, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। तो अशुभ क्रिया को छोड़ शुभ क्रियाएं करनी चाहिए। शुभ क्रियाएं करनी चाहिए तो आरुषोर मुनेर गुम कर्म कारण मुच्यते। योगारूढ़ से तस्यैव, वो जो योगारूढ़ हो जाए, समत्वम योग उच्यते, समता की प्राप्ति हो गई, तो वो योगारूढ़ हो गया। तो कर्म योग है, इसके दो विभाग है, एक क्रिया विभाग है, एक सम विभाग है। क्रिया करते हुए सम रहने से योग होता है, और केवल क्रिया करने से कर्म होते हैं। तो कर्म पूर्वार्ध है, समता है, योग है, उत्तरार्ध है। इन दोनों को कर्म योग कहते हैं। तो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए तो क्रिया उपयोगी है। न कर्म नाम अनारंभा निष्कर्म पुरुषोष्णुते। कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं होती। न तो संन्यास लादेव, और क्रियाओं के त्यागने मात्र से भी स्थिति नहीं होती, निष्कर्म स्थिति नहीं होती, सिद्धि नहीं प्राप्त होती। तो पहले क्रिया करनी पड़ती है, करनी चाहिए। वो क्रिया करोगे सकाम भाव, तो सकाम भाव से क्रिया से फिर क्रिया, क्रिया से फिर क्रिया, क्रिया से ब्रह्मा जी के कई जन्म बीत जाए तब भी इसका अंत नहीं होगा। क्योंकि कामना करी उसके लिए क्रिया होगा, फिर क्रिया करी फिर कामना, अरे कामना से ज्यादा एक कामना पूरी होते कई कामना जागृत होगी। उनके लिए क्रिया होगी, कामना फिर क्रिया ही क्रिया, रात और दिन होगी। ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हो जाए तो भी एक क्रिया समाप्त नहीं होगी। होता है दो भाव को लेकर, ध्यान दें आप लोग, कृपा करें। एक क्रिया होती है हमारे फल मिलने के लिए, हमारे कार्य की सिद्धि के लिए, कांक्षंता कर्मणाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, उन कर्मों का फल चाहते हैं, उस सिद्धि के लिए भी कर्म होता है। जैसे व्यापार करते हैं पैसों के लिए, खेती करते हैं पैसों के लिए, काम करते हैं पैसों के लिए, तो क्रिया होती है किसी उद्देश्य को लेकर के। तो ऐसे ही क्रिया किसी फल को लेकर के क्रिया की जाती है, और एक फल के त्याग के उद्देश्य से क्रिया की जाती है। मानो हमें कुछ नहीं लेना है, तो सबके हित के लिए किया जाती है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित के लिए कर्म करते हैं, तो ये क्रिया है योगारूढ़ करने वाली होती है। जो फले संतु फल की इच्छा होती है, वो फले संतु निबद्ध थे, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो समय समय उपरम हेत, तो योगारूढ़ होने से क्या होता है कि नेन्द्रियार्थेषु और न कर्म सु न क्रिया में न पदार्थों में आसक्ति नहीं होती, और सर्व संकल्प सन्यासी भीतर में संकल्प भी नहीं होता भाई इस निष्क्रिया से हमारे को ऐसा मिले काम मिले ये हो जा कुछ फायदा होगा ये बिल्कुल नहीं, ये तीर नहीं होती है। तब योगा रूढ़ होता है, योगा रूढ़ क्या है समता आ जाती है। तो योगा रूढ़ होता है तो योग क्या है समत्वम योग उच्यते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीता का योग है। तो काम करें वो करने का जो वेग है उसको निकालने के लिए, करने का एक वेग है, आदमी निकम्मा नहीं रह सकता। जैसे साइकिल चाहे तो बड़ी तेजी से चला सकते हैं मन खड़ी रहने में मुश्किल हो जाएगी गिर जाएगी, ऐसे वृत्तियां करने का स्वभाव है तो वृत्तियां चलेगी परंतु स्थिर रखोगे तो संकल्प विकल्प होगे अथवा नींद आ जाएगी वो स्थिरता नहीं रहेगी। साइकिल खड़ी कैसा रहे इस तरह खड़ी नहीं रहेगी वृत्ति। तो कर्म करना है फल प्राप्ति के लिए और कामना के त्याग के लिए, कर्म दोनों के लिए करना होता है। उद्देश्य होता है फल प्राप्ति का तब फिर अंत होता ही नहीं, कई ब्रह्मा लोग अशांत हो जाते हैं अंत नहीं होता। और दूसरों का हित करना है अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ भी, न पदार्थ चाहिए न भोग चाहिए न संग्रह चाहिए न सुख चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है। सबका हित हो तो सबके हित के लिए किया जाता है तो वो कामना के त्याग के लिए कर्म किया जाता है। एक कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, उद्देश्य दो तरह के होते हैं, कर्म करता है वही, वो कर्म तक करने का वेग दूर हो जाए। पहले का राग है वो पहले का राग त्याग हो जाए, नया राग पैदा न हो तो कर्म करने के कर्मों के वेग का नाश हो जाए, और पहले कर्म करने की इच्छा थी वो करके समाप्त कर दो और फल के उसे क्या हो जाएगा पूर्व का राग मिट जाएगा, और फल की इच्छा न करने से नया राग पैदा नहीं होगा तो राग नहीं तो बीत राग हो जाएगा। तो यदि इंद्रिया से न कर्म सुनुष्य सर्व संकल्प सन्यासी योगा योगारूढ़ हो जाएगा। अब वो सर्व संकल्प सन्यासी है संकल्पों का त्याग करना, तो संकल्प क्या है तो मन में जो फूर्णा होती है एक संकल्प होता है, दो चीजें है ऐसे ही, एक आवश्यक संकल्प है एक अनावश्यक संकल्प है, एक फूर्णा है और एक क्या
संकल्प
है। तो फूर्णा है वो कुछ विवेक विक्षेप नहीं करती, खुद तो विक्षेप है वो परंतु वो गलती नहीं करती, बांधते नहीं, फूर्णा आगे चलेगी हवा आगे चलेगी निकल गई तो हवा लगी झोंका लगा इतना तो है परंतु वो बाधक नहीं होती। तो ऐसे संकल्प नहीं है, ऐसे ही फूर्णा होगी बैठा है गंगा जी याद आ गई याद ही चलेगी, कोई आगे नहीं से पकड़ता नहीं उसको। जैसे एक कैमरे का प्लेट होता है एक कली चढ़ा हुआ शीशा होता है, तो कैमरे का प्लेट तो अगर वो पट पकड़ लेता है और कली चढ़ा हुआ शीशा दिख रहा तो बहुत साफ है पर पकड़ता है ही नहीं अब चला जाए। जिस तरह से संकल्प फूरना होती है वो जैसे कली वाले कांच के सामने आपका चेहरा आया चला गया वो पकड़ता नहीं है, संकल्प होता है वो कैमरे का प्लेट होता है जो सामने पट पकड़ लेगा उसको उसे सब जाएगा। इस वास्ते कामना कोई नहीं है, ऐसी फूरना होती है। तो फूरना है अभ्यास और बैराग्य दो बताया है, तो अभ्यास तो बताया है फूर्णा को शांत करने के लिए, बैराग्य बोलता है कामना से फूर्णा उनके लिए। ये दो अभ्यास बैराग्य अभ्याम का निरोध वृत्तियों का निरोध होता है तो उसका सबका निरोध हो जाता है। तो उसमें क्षिप्त विक्षिप्त मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका होती है चित्त की, वो छोड़ देते हैं अभी। तो समय समय ऊपर अमित, तो उपरामता में ना राग होता है ना द्वेष होता है। राग होता उससे भी संबंध जुड़ता है, द्वेष होता उससे भी संबंध जुड़ता है, उपरामता से संबंध नहीं जुड़ता है। आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उसे एकाग्रता नहीं होती है जल्दी, तो समय लगने पर भी नहीं होती है। कारण क्या है, ये खास बात है, साधक ध्यान दें इस बात पर। आप संकल्पों का त्याग करने के लिए मन से चिंतन करके त्याग करते हैं, तो त्याग करने से आपके संकल्प दृढ़ होंगे, छूटेंगे नहीं। कैसे कि आप उनको पक्का मानते हैं, तभी तो दूर करते हैं, तो दूर करते हैं जो जो पक्का होता है, जो पक्का होता है। इसमें वर्ष लग जाएंगे, नहीं होगा जी, कैसे हो जाएगा। जिनको आप दूर करना चाहते हैं, वो उनको ही आप दृढ़ कर रहे हो, मन में समझते हो, मिटाते हैं, मिटाते नहीं दृढ़ करते हो। अगर दृढ़ नहीं है तो मठत मिटाती हो, मिटाने की इच्छा तो दृढ़ है तभी तो होती है। हम साधु को पता नहीं लग क्या कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं। इस वास्ते ऊपर में इतना भगवान है, शनि शनि ऊपर, शनि शनि क्यों कहा कि एक साथ उपराम नहीं होता, कोई उगता न जाए कि इतना दिन हो गया अभी उपराम तो आई नहीं, इतनी देर होगी, आधी घंटा होगी फिर उपराम नहीं आई, तो भगवान के धीरे धीरे उपराम हो जाओ। उसे मतलब नहीं, राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, ना ठीक है ना बेठीक है, ऐसे उपराम हो जाओ। ये वो बता रहे हो जो कैसे लगाए, उस मन कैसे लगाए, वो बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से ऊपर शनि शनि ऊपर अमेत, ऊपर अमेत में बुद्धिया धृति गृहितया, धृति गृहितया बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य होना चाहिए। मन इतने दिन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ तो कैसे होगा, ऐसे उकतावे नहीं, धीरज रखो। ये काम तो सिद्ध होने वाला है जरूर, पैसों की तरह पदार्थों की तरह, ये नहीं है सिद्धि हो जाए असिद्धि हो, दोनों हो जाए, ये दोनों नहीं होगा, इसमें सिद्धि ही होगी। और थोड़ा धीरज रखे, धीरज रखना होगा। तो धृति के आते हैं बुद्धिया, धैर्य सहित जो बुद्धि हो उससे उपराम रहे। बुद्धि और धृति दो का उपयोग ज्ञान योग में विशेष रूप लगाया है। इस वास्ते 18वें अध्याय में जब 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक ये विषय आया है, तो उसमें बुद्धि और धृति के भेद आए हैं। बुद्धि भेदम 29वें श्लोक में, 30 31 32 33 34 में बुद्धि और धृति का, 30 31 32 33 34 35 बुद्धि है, तीनों में आगे धृति का वर्णन है। तो धृति और बुद्धि इन दोनों की आवश्यकता है। तो उपराम होने में धृति गृहित या बुद्धिया, तो सात्विक बुद्धि लेनी 30 श्लोक वाली, 33 वाली सात्विक बुद्धि धृति लेनी। तो बुद्धि वेदन धृति से वो बता है, तो बुद्धिया धृति गृहित या उस धृति बुद्धि के द्वारा शनि शनि उपर विवेक के द्वारा अपने में राग है द्वेष है ना, आगे कोई फोड़ना तो आगे हाय आई क्यों आ गई तो द्वेष हो गया, और अच्छी है याद फोड़ना राग हो गया ना, अच्छी मंदी है क्या मतलब नहीं अपने, तो भी आप शाम मिट जाएगी, मिटाओगे तो उसमें बल आ जाएगा। बीमार होता है, सन्निपात आया हुआ है, उसको आप उठाओ, उसे वो मना करो, जोर लगाएगा, उसे तो उठो दो, उसे जोर मत करो, आप पड़ जाएगा, बल तो है नहीं उसमें, पर आप उठाओगे तो बल करेगा वो, तो बीमार है ना वो, पागल है। इस तरह से शनि शनि ऊपर ऊपर धृति गृहित या बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य रखे, और उपराम हो जाने मतलब नहीं है, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ना सुख है ना दुख है, उपराम होना, इसका नाम उपरति उपराम। कोई विरोध नहीं, कोई राग नहीं तो अच्छे में राग हो जाए, विरोध में द्वेष हो जाएगा, तो ऊपर अभेद। फिर आत्म संस्तम मन कृत्वा, मन आत्म संस्तम क्या करे, कि जैसे मैंने पहले कहा आरंभ में ही कि परमात्मा तत्व में कोई क्रिया नहीं है, ये पहले धारणा करो। तो वो क्या है? वो आत्म संस्तम मन कृत्वा है। आत्मा में मन को स्थिर स्थापन कर रहे, मन भीतर धारणा कर रहे कि वो तत्व बिल्कुल निष्क्रिय है, ऐसा पहले मान ले। मान करके आत्म संस्तम मन कृत्वा हो गया। तो ये अभी बताया, यहाँ मैंने पहले कह दिया कि एक आत्म तत्व है जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई अवस्था नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, सबसे रहित एक तत्व परिपूर्ण है। ये आत्म संस्तम मन कृत्वा ऐसे मन को स्थापन करते और फिर कुछ भी चिंतन न करे ही नहीं चिंतन। ऐसी अवस्था में चिंतन होना शुरू हो जाता है। हम करते तो नहीं है परंतु उथल पुल शुरू होती है, बड़ा वेग आता है, कभी कभी जोर से चिंतन होता है। उसमें धैर्य रखना, बुद्धिया धृति क्रियतिया, धैर्य रखना कि ये निकल रही है। जो भीतर अंतःकरण में भोग भोगने से, व्यवहार करने से जो संकल्प भर गए हैं, वो जब मौका लगता है शांत होने का तो वो निकलते हैं। तो ये जा रहे हैं, उसे हमें परवाह नहीं, ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ऐसा तांता बन जाता है। और ये जैसे सिनेमा की फिल्म खुल जा रही फिल्म, वो कई तरह की बातें आती रहती है, उनको देख करके मुस्कुरा हृदय को खेल तमाशा है। कुछ नहीं, वो राग न द्वेष है। राग द्वेष करो तो नए संकल्प पैदा हो जाएंगे, वे संकल्प सजीव हो जाएंगे, फिर नए संकल्प पैदा हो जाएंगे। इस वास्ते राग और द्वेष उपरा हो जाएगा। अब मतलब नहीं, कोई आवे कोई जावे, कोई बैठे कोई जाए। फिर आदमी कहना न किंतित, अपने चिंतन कुछ भी न करे। चिंतन किया जाता है उसमें बंधन होता है, चिंतन आप से आप होता है उसमें बंधन नहीं है। उसमें ये बंधन कर लेता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये बंधन हो जाएगा। आप से आप होती है वृत्तियां नष्ट होती है। जो संसार में वृक्ष उगते हैं, बड़े होते हैं, नष्ट हो जाते हैं पहाड़ों पर गई, इस वजह से मन की वृत्तियां पैदा हो जाए और नष्ट हो जाए। अपने मतलब नहीं है पैदा होने से, नष्ट होने से, किसी शुभ से अशुभ से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा का चिंतन करे, संसार का चिंतन करे, संसार का चिंतन न करे, परमात्मा करे, ये सब राग द्वेष पैदा करने वाली है। तो कुछ भी चिंतन न करे, उपराम हो जाए, रहित रहे। कभी इसका मतलब नहीं है, इससे बिल्कुल संबंध रहित हो जाए। राग करो ठीक मानोगे तो राग हो जाएगा, तो संबंध जुड़ जाएगा, और बेठीक मानोगे तो द्वेष हो जाएगा, तो संबंध जुड़ जाएगा। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, यह दोनों प्रत्येक इंद्रिय में व्यवस्थित है। तो नमस्म आगत से इन दोनों में किसी के वशीभूत न हो, तो इसके वशीभूत लोगों सब उपराम हो जाए। ऐसे उपराम रहे और इनकी परवाह न करे, चुप बैठा रहे, न राग है, न आरस है, न दोष है। ऐसी अवस्था में अगर नींद आती हो तो फिर वो काम नहीं होगा आपका। नींद आ जाएगी, उसमें बुद्धियां मोहित हो जाएगी, मूर्ता आ जाएगी। तो ऐसा हो तो नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम जप करो खड़े हो करके और कीर्तन करो। नींद नहीं आनी चाहिए, संकल्प कितना ही हो वो आपको बाधा नहीं रहेगा, नींद बिल्कुल बाधा दे देगी, बिल्कुल मुंह से। हाँ, संकल्प छोड़ने पर नींद आती है, ये बड़ी बाधा है। विक्षेप और लय दोष है, जो समाधि लगाते हैं हाँ, तो नींद आएगी तो बुद्धि क्रिया। इस वास्ते बुद्धि क्रिया मत इंद्रिय वहां कहा है, उसका अर्थ बुद्धि के विषय परमात्मा हो जाए ये नहीं है। बुद्धि जागृत रहनी चाहिए साफ, बुद्धि में नींद नहीं आनी चाहिए, ये अर्थ है उसका। तो जो कुछ आवे उसमें उपरा में रह जा, उपरा में रहते रहते सब संकल्प आकर नष्ट हो जाएंगे, फुर न होगी, फिर संकल्प संज्ञा नहीं होगी। संकल्प संज्ञा वो होती है जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह तीन चीज होती है। जिस संकल्प में सत्ता है किसी की और उसमें आसक्ति है और एक आग्रह है, वो जाता संकल्प। और सत्ता आसक्ति आग्रह के बिना जो आकर के फुरना मिट जाती है उसका नाम है फुरना। फुरना बाधक नहीं होती है। विकल्प कोई कह रहे हैं, का कोई नाम है संकल्प विकल्प, परंतु फुरना है वो एक बिल्कुल तटस्थ है। जैसे हमारे गया मारी जाती है, परंतु हमारे को जब पुण्य लगता है ना पाप लगता है, ना हम राग में करते हैं ना द्वेष करते हैं, तो हम निर्लिप रहते हैं। वह जैसे क्रिया होती है ऐसे ही मन में क्रिया होती है, तो कुत्ते के मन में भी क्रिया होती है, इसमें मन में क्रिया होती है। अगर मन कहो मन हमारा है तो आपका है, यही आपके दोष है। नहीं तो कुत्ते के मन के साथ जितना आपका संबंध है उतना ही आपका इस मन के साथ संबंध है। क्यों? नित्य है सर्वगत स्थान। आप सर्वगत हो तो कुत्ते में आप नहीं हो गया, तो कुत्ते के मन के बस आप चिंता नहीं, इस मन के लिए चिंता। इसका अर्थ है कि ये मन आप मानते हो अपना, और ये ममता ही मल है। ये जो मेरा पना है मन में, ये ममता मल जरी जा रही, ये मल है ममता। निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, तो इसके साथ ममता नहीं चाहिए। मेरा मन लगे ठीक तरह से, ये मेरा मन हो गया अब नहीं लगेगा, अब तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन हो गया ना, और आपका मन नहीं होगा तो लग जाएगा, तो वो भगवान का हो जाएगा। आप ही भगवान करेंगे, न लगे नहीं लगे अब मतलब नहीं, हमारा है ही नहीं है। हमारा नहीं होता कि लगे कि नहीं लगे, हमारा छोरा नहीं है, वो पढ़े न पढ़े कुछ भी करे, हमारा छोरा नहीं पढ़े तो ठीक नहीं होगा, पढ़ने ठीक होगा। तो ये मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर ममता छूट जाए, अहंता भी छूट जाए। ये भी है, अहंता में भी ममता भी होती है, अहंता होती है। ये मेरा अहंकार है, ऐसा मेरा होने से ममता भी होती है, अहंता दोनों रहती है उसमें, आगे ममता रहती है। इन दोनों से रहित हो जाए तो उपराम हो जाए, फिर कुछ भी चिंतन न करे तो ये चिंतन का प्रवाह आता है, उसके साथ अपने को अच्छा बंदा कुछ भी न करे उपराम रहे उनसे। हमें मतलब क्या, न अच्छे से मतलब है न बुरे से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है इनसे। हम तो एक सत्व रूप मात संस्त मन कृत्वा परमात्म तत्व निर्विकार रूप से परिपूर्ण स्वम शांत आनंद घन से घन सद घन है, वो है अपना। उसे क्या मतलब फूलना से, अच्छे से क्या मंदी से, फूलने से मतलब ही नहीं है। ऐसे उपराम हो जाए तो भी सतह शांत हो जाएगी। जैसे गंगा जी का जल है, उसको ठहरा ठहरने पर धीरे 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 मिट्टी बैठे स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इस तरह से वृत्तियां हो करके ठीक निर्मल हो जाएगा मन। तो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं वे निकलते हैं। जब काम करते हो उस समय संकल्प काम वो पड़े रहते हैं, और ऊर्जा तो पता नहीं लगता, आप काम में लगे रहते हो, सब काम छोड़ दिया और परमात्मा में लगे नहीं, तो बीच में रह गया खाली। खाली समय फिल्म खुलती है, फिर आप तरह तरह बातें आती है सामने, तो उनके उनसे उपराम रहे, फिर कुछ भी चिंतन न करे, अरे होने वाले चिंतन के साथ संबंध न जोड़े, अच्छा मंदा करके उपराम रहे उनसे, तो ये धीरे धीरे चित्र शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तब आप ही एक विलक्षण सुख आपको अनुभव होगा, सुख वृत्तियां शांत होने से। क्यों? त्याग से शांति होती है, पदार्थों के त्याग से शांति होती है, एक पदार्थों के रहने से शांति होती है। तो रागी आदमी को तो पदार्थों के मिलने से होती है, कुछ वैराग्य और साधु होता है उसने छूटने से शांति होती है। जैसे कन्या पर्ण आ रही थी उसकी कोई चिंता नहीं रही, अपनी नहीं रही, ऐसे त्याग से शांति मिलती है। तो उस समय में एक शांति पैदा होगी, एक आनंद पैदा होगी, एक सुख पैदा होगा। उस शांति को आप भोग न करें, उसमें राजी न होगा, बड़ा अच्छा हुआ, तो ये क्या सात्विक शांति होगी। सात्विक है वो दो काल से बांधता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगर। वहाँ ज्ञान होगा साफ साफ चीजें दिखने लग जाएगी और सुख होगा शांति होगी। तो सुख और ज्ञान की आसक्ति होगी कि कैसा ज्ञान हुआ है, हाँ हो गया बढ़िया, शांति बड़ी बड़ी स्थिरता है, तो उसमें फंस जाओगे वो फिर अगर ही नहीं बढ़ोगे। इस वास्ते सुख संगे ने बताया सतोन सुख के संग से ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, अगर संग नहीं हो तो सुख और ज्ञान बनेगा नहीं। उस व्यक्तित्व जाओगे तुम संबंध जोड़ लोगे तो वहां बन जाओगे, बनना क्या है तो उनसे ऊंचा नहीं उठने देंगे। सात्विक की वृत्ति आप गुणातीत आपको नहीं होने देगी, ये उसे बांधना है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, उससे आप कुछ भी संग नहीं, सुख हुआ अच्छी बात है उसमें, यहाँ बहुत सुख है बड़ा सुख लिया तो बंधे, ऐसे कैसा ज्ञान हुआ है कैसा साफ हुआ है, राजी हुए तो बन गए। इस बार तुझे कोई राजी होने जा रहा है, सुख आ गया, शांति आ गई, ज्ञान आ गया, ठीक है आ गया। तो वो उपराम वाली वृत्ति यहाँ भी साथ में ही रहे, ऐसे साथ में रहने पर फिर क्या होगा, शांत हो जाएगी सभी। और सुख की भी आसक्ति ज्ञान की भी आसक्ति नहीं तो उससे सुख मिटेगा नहीं, ज्ञान मिटेगा नहीं, वो स्वतः बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आपको गुणातीत कर देगा, वो सात्विक पना मिट करके निर्गुणता में आप चले जाओगे, क्योंकि आपका स्वतः निर्गुण स्वरूप है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, ये अनादित्व अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अव्यय अनादि है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कांते न करोति न लिप्यते। अभी जो शरीर में स्थित है वो भी कर्तापन माना हुआ है, भोक्तापन माना हुआ है, ममता की हुई है, उसमें ममता नहीं है, असक्ति नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है। तो स्वतः सबका आत्मा ऐसा है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अव्यय शरीरस्थोपि कांते न करोति न लिप्यते। जो शरीर में स्थित नहीं है कर्ता लिप्त होता ही नहीं। तो ऐसे शांति से चित रहे, ऐसे अभ्यास करने से उसमें स्वतः स्थिति होती है स्वाभाविक। इस बात से सुख दुख का असर नहीं पड़ता। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, भोक्तापन में सुख दुख में होने में पुरुष हेतु है, सुखी दुखी होता है। कौन पुरुष होता है कि पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में सुख हुआ तो सुख दुख भोगता है, और प्रकृति से अतीत हुआ तब सम दुख सुख है, सुख आवे दुख आवे उसमें सम है। तो क्या हुआ कि स्वस्थ स्वयं स्थित हुआ, जो स्वयं कहते थे स्वयं मैं स्वयं तुम स्वयं वो स्व है। तो सम दुख सुख स्वस्थ, अब सब दुख में समा हो गए तो स्वरूप में स्थिति हो गई। सम दुख सुख स्वस्थ सब दोष आसन कांतन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा प्रसंस्तुति, कोई निंदा करे स्तुति करे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां तक वो पहुंचते नहीं। ये तो राजसी और तामसी पहुंचते, वो सुतोर से ऊंचा उठ गया, अपने शुरू में वहां है ही नहीं, क्या राग करे क्या द्वेष करे किससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे अत्यंत शुभ हो जाए, ये चुप होना है, ये बड़ी बढ़िया चीज है। इसमें मन बुद्धि को लगाना नहीं है, मन बुद्धि का संबंध विच्छेद है, तो ये किसी असहार से नहीं है। मैंने पहले कह दिया महाराज, ये आरंभ में ही मैंने कह दिया कि आपको एक परमात्मा तत्व है, ये आत्मसम्मन हो गया। अब मास्टर करता नहीं, आत्मसंस्त करना नहीं है, पहले ये मान लिया कि परमात्मा तत्व में कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय तत्व ऐसा निर्विकार तत्व है, ऐसा मान लिया, यही आत्मसंस्तमन कृत्व है, यही मना कृत्व आत्मसंस्तमन कृत्व है।
संकल्प और होना एक बार की शांति हो जाए, एकदम शांत हो जाए, तो ये से संकल्प और स्फूर्णा होती है ना, वो एकदम शांत हो जाए।
हाँ।
तो वो स्थिति बिगड़ किया चुप रहना क्या?
वो स्थिति बिना क्रिया के चुप रहने की वाली है क्या?
हाँ हाँ हाँ, बिना क्रिया सोते है, पर शांति का उपभोग करोगे तो शांति वैसी रहेगी नहीं। उसमें राजी हो जाओगे तो वैसे शांति नहीं रहेगी। जैसे रुपया कमाया खर्च कर दिया तो जमा नहीं होगा, खर्च नहीं करो जमा होगा, राजी हो जाओ तो खर्च हो जाएगी, वो तो रहेगी नहीं।
क्या उसमें
पूर्णा
में कोई
भगवत
विषय चिंतन हो
गया? ना ना, भगवत विषय संसार विषय फर्क ही नहीं उसमें, उसमें कुछ चिंतन नहीं है? ना भगवान का चिंतन करना है, ना संसार का चिंतन करना है, ना आत्मा का ना अनात्मा का।
हो
जाए तो होगी, संसार की होगी जो वो भी होगी।
भगवत विषय हो जाने पर भी उसके ऊपर बार बार चिंतन नहीं करें?
हाँ, नहीं नहीं करना बिल्कुल।
उसकी भी संसार के संकल्प के समान उपेक्षा,
उसमें समान उपेक्षा नहीं, वो स्वरूप थोड़ा ही है। भगवत विषय का संकल्प हुआ वो स्वरूप नहीं है, मनोवृत्ति है महाराज। उसमें भगवान का हुआ संसार वाद क्या फर्क पड़ा है? तो मनोवृत्ति, इसका दोनों से उपराम हो जाए। वो मनोवृत्ति हो जाएगी, भगवत संबंधी होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। राग द्वेष वहां हो जाएगी, वहीं बन जाओगे, फंस जाओगे। तो राग द्वेष होना नहीं चाहिए किस जगह, वहां तो उपराम हो गया बस।
ये बात नहीं चल रही, जो बात चल रही उसमें से
महाराज जी, पर चुप जो साधन है उसमें शनि शनि जो है आवश्यक है क्या? चुप साधन में शनि शनि जो है आवश्यक है?
ये आवश्यक है, ये आवश्यक है।
पहले महाराज जी चुप साधन एकदम नहीं हो सकता क्या महाराज जी?
यहाँ तो इससे हो जाएगा। इससे स्थूल भी साधन है, ये भी साधन है। चुप साधन के लिए स्थूल क्रिया भी है, परंतु ये आत्मसंस्कार में न कृत्वा न किंचित चिंतित।
बेसिकली ऐसा पूछ रहे महाराज जी कि इसमें शनि शनि की शर्त है या एक साथ भी हो सकता है?
एक साथ हो सकता है, पर शनि शनि इस वास्ते दिया कि कुछ समय पर नहीं होवे तो घबरावे नहीं। बुद्धि गृहतया धृतिया उपर में धैर्य रखना, धैर्य तो शनि शनि इस वास्ते का धीरे धीरे हो जाएगा। आप साहब ही कारण क्या है कि ये प्रकृति है, उसमें क्रिया होती है, प्रकृति का संबंध विच्छेद होगा तो आप पहले उपराम होंगे, उपराम होने पर स्वाभाविक पूर्णा होगी। उससे आप अपना संबंध न जोड़े, अपनी है ही नहीं पूर्णा, सब प्रकृति की है, अंतःकरण की है, इंद्रियों की है, मन बुद्धि की है, इस वास्ते उनको उससे उपराम हो जाए, ऊंचा उठ जाए तो कुछ देर हो नहीं हुआ तो कि नहीं समस्या हो जाएगी। इस वास्ते समस्या नहीं दिया। एक साथ तो उनकी होती, जिसे ऐसा अभ्यास पहले किया है उसके एक साथ हो जाएगी, और हर एक आदमी एक साथ नहीं होगी। एक साथ होने का ये मैं ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ, तब तो ज्ञान तो एक साथ पट हो जाएगा। सुबह बताया जैसे उसमें वृत्ति नहीं लगती, पर ध्यान करना चाहे तो ध्यान में भी उत्तम बात है, मन बुद्धि लगाकर ध्यान करना है, वो कर्ण सापेक्ष है, ये कर्ण निरपेक्ष है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी चिंता न करे, कुछ भी चिंता कुछ भी करे तो कर्ण सापेक्ष हो जाएगा। तो वैसे तो होने से स्वतः स्वस्थ हो जाओगे, अपने स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति होगी। स्वाभाविक स्थिति सबकी है, ये संकल्प के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, और इससे उपराम होने पर उसमें उसका अनुभव हो जाएगा। न कहीं चली चिंती अभी बच्चे बाबा कूड़े घटना जाऊंगे, ये खीर में धूल मत रखो। आप दूसरे समय प्रश्न करो, अबार अबार तो इसको समझ कर इसमें करो। और कृष्ण मैं साधु में क्या मतलब ही है, ये मतलब यहाँ कृष्ण साधु की बात ही नहीं है, यहाँ तो वृत्तियों से उपराम होना है। कृष्ण कोई बात आ जाए याद तो आ जाए चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं, आ जाए तो कोई मतलब नहीं, चले जाए तो कोई मतलब नहीं, अच्छे आ जाए तो लोग बुरी आ जाए तो सो गई, आ जाए चले जाए तो अपने कोई मतलब नहीं, उपराम रहे उसने कोई संबंध नहीं अपना, किसी से राग है ना द्वेष है, ऐसे उत्सुप साधन है ये। न राज्य होना ना नाराज होना,
स्वरूप का राज्य होना है, वृत्तियों का राज्य होना
है।
खुशी आती है वो स्वरूप की आती है या वृत्तियों की आती
है? वो विषयों की नहीं आती है, एकाग्रता की आती है।
वृत्तियों की आती है या स्वरूप की आती है, सब लोगों में खुशी आती है,
वो सुखी आती है मन की स्थिरता से, वृत्तियां शांत होने से, वो स्वरूप का सुख नहीं है, वो इस वास्ते सुख ले नहीं, लोगे तो भोग हो जाएगा सुख का, वे राजी हो जो भोग हो जाएगा, शांति बड़ी अच्छी है ऐसा मानोगे तो भोग हो जाएगा शांति का, भोग होने पर शांति ठहरेगी नहीं, वैसी नींद आज नहीं ठहरेगी, भोग करो तो नहीं ठहरेगी, होगी कभी होगी फिर नहीं होगी। कई बार ऐसे भगवान की कथा सुनते सुनते आंसू आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, उसमें राजी होया फिर आंसू सूख जाते हैं, वो गदगद नहीं रहता, भाव रहते ही नहीं, आपने वो पैसा पैदा कर खा लिया वो कैसे जमा कैसे हो, इसमें से गदगद भाव हो जाए तो उसमें दर्शन होना चाहिए, भगवान का प्रेम होना चाहिए, ये आगे लालसा बढ़ाओ, उसमें राजी मत हो, राजी हो जाओ अटक जाओगे, वो सुख संग हो गया, सुख का संग हो गया, आसक्ति हो गई, इस वास्ते उसमें आसक्ति ना करके उपराम हो जाए, हमें मतलब नहीं है कुछ भी है, कुछ संसार में तो सम दुख सुखा स्वस्थ, फिर सब स्थित हो जाएंगे, आनंद हो जाता है, उनका भोग नहीं करे, आनंद में खुशी न मनावे, ऐसा नहीं कहता हाँ बहुत अच्छा आनंद हुआ फंस जाओ भाई, ये बात है। तो ये करने के बीच में पहले क्रिया करनी होती है, फिर क्या होता है, किस रीति से होता है, वो रीति बताइए आपको, इस रीति से। अब इसमें कोई शंका हो, इस तत्व को समझ कर वो शंका करो, इसमें कुछ शंका नहीं हो, बड़ी शांति बड़ा आनंद, आपको ये एक बार हो जाएगा ना तो इस चस्का लग जाएगा, फिर आप इसको लगे तो ये छोटे बच्चे को अन्न प्राशन कराने दूध मिश्री में जाता है, इस तो सुख लेको तो आप पर जाओगे, सुख लेना नहीं है। ये प्रकार है, हमने कहा क्या प्रकार हो, ये प्रकार हो, हमने जो पुस्तकों में पढ़ा है सुना है राम सुना लिया, ये प्रकार है, न किंचित भी विसंति। अब ऐसी अवस्था नहीं हो तो ये तो यो तो निस्तरती मनस तंत्र मस्तम ततस्तव निर्मित आत्मनिर्भर, ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो, फिर ऐसा नहीं हो तो जहाँ जान चाहे वहां रहो परमात्मा में लगाओ, अभ्यास दो तरह का है, उस लोग जो बेचारे थे उसको छोड़ कर परमात्मा में लगाओ, और एक दूसरा अभ्यास है कि जहाँ जाए वही परमात्मा को देखो, जहाँ जाए वही परमात्मा को देखो, गाय को आएगी परमात्मा है, गंगा जी आएगा परमात्मा है, पथरी आएगा परमात्मा है, मैदा कुशेर आ जाएगा परमात्मा है, इसमें कूड़ा कटकरी आ जाएगी परमात्मा है, इसमें चाहे वहां परमात्मा का चिंतन करो, चाहे वहां से हटा कर दो अपना इष्ट उसमें लगाओ, ये तो निष्ठी मनस्तन सर्वस्तरम तपस्तो नियमित आत्मनियम घसल नहीं प्रशांत मनसम, तो ये फिर क्या होगा कि प्रशांत मन हो, मन बड़ा शांत हो जाए, योगिंदम सुखम उत्तम सुख मिलेगा उसको, उपेति शांत रजतम ब्रह्म भूतम अकल्पसम। ये ब्रह्म भूत अवस्था है, ब्रह्म रूप बना अवस्था। ब्रह्म भूत अवस्था के बाद परमात्मा की प्राप्ति असली होती है। ब्रह्म भूत अवस्था में मन ब्रह्म भूत है, अपने स्वयं मन ब्रह्म भूत है, ब्रह्म बना हुआ। तो बना हुआ ब्रह्म नहीं है, इसमें स्थिर रहने से आप साफ ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। कुछ चिंतन मत करो, कुछ सदैव वो प्राप्त है। ब्रह्म भूत कभी कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, तो भोग नहीं होगा, तो स्वरूप स्थिति सत्य पहले सिद्ध है, वो प्राप्त हो जाएगी। करनी कुछ नहीं है। तो ब्रह्म को नसी रेण बहुत जल्दी प्रशांत मन से येनम योगिनम सुगमतम पैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्पसम। सदात्मान योगी विगत कल्पना सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यमी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुति अत्यंत सुख सुखम अत्यंत गम ये अतिशय सुख निरतिशय सुख उस स्थिति हो जाएगी। स्वतः आप साहब जो पहले से है वो मन बुद्धि के संबंध से उनका अनुभव नहीं हो रहा है, समझ छूट जाएगा, पानी पड़ा पड़ा आप से आप मच्छी बैठ जाएगी, स्वच्छ हो जाएगा। तो आत्मोषम सुखे नम अत्यंतम सुखम अस्पते सुख पूर्वक उस अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो ज्ञान योगी के लिए क्या होता है, भक्ति योगी के लिए क्या होता है, उसका विवेचन आते आत्म सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि से आत्मनि ऐसे योग युक्त आत्मा सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा सच्चिदानंद घन रूप से परिपूर्ण परमात्मा है। तो सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि से आत्मनि ऐसे देखता है। और भक्ति होगी यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वंच मई पश्चिरी श्या न प्रणश्यामी सदमे न प्रणश्यति सर्वभूत स्वात्मान सर्वभूत हरिश्यात्मि। तो सर्वभूतन तो मृत्यागार आत्मा रह जाएगा, सर्वभूतस्थम आत्मान और सर्वभूत हरिश्य आत्मनि। तो आत्मा दोनों में रहा और उसमें स्थित संसार संसार में आत्मा चल रहा, इनमें स्थित रहने से सर्वभूत कूड़ा कर चल जाएगा, आत्मा रह जाएगा। सर्वभूत आत्मा सर्वभूत चातुरी एक सत्य योग युक्त आत्मा सर्वत्र समुद्र सुना सब जगह परमात्मा ही देखता है। ऐसे यो माम पश्चिम भक्ति वाला यो माम पश्चिम सर्वत्र सब में भगवान को देखता है, और सर्वंत्र भगवान में देख सर्वंच मई पश्चिम भगवान में देखता है, भगवान को सब में देखता है, सबको भगवान में देखता है। वो भगवान में देखते हुए सब मिट जाएगा, न सब में परमात्मा न परमात्मा सब है, सब सब गया पर भगवान में रह गया। आप साहब सत्य तो परमात्मा सब जगह परमात्मा है, उसमें संसार मिट जाता परमात्मा रह जाता है। ये साधन सब जगह भगवान को देखकर दंडवत करो, नमस्कार करते रहो, जो याद आवे नमस्कार करते रहो, सब भगवान मानो। कोई कैसा है कूड़ा करकट हो, बढ़िया हो, दुर्गंधी हो, सुगंधी हो, कुछ भी हो, बीते परमात्मा को ये कहिए। ऐसे आप करते रहो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी। जो आप सावधान रहेंगे भगवान है, ये पूरा घटा भगवान है, बढ़िया है भगवान, ये घटिया है भगवान है, भगवान हमारे सब में परिपूर्ण है। तो भगवान की मुख्यता हो जाएगी, ये पदार्थों की गुणता हो जाएगी, ये मिट जाएगा। संसार तो मिटने वाला है एक, परमात्मा रहने वाला ही है। रहने वाले को आप स्वीकार कर लिया, मिटने वाला आप सब मिट जाएगा। वो मिटना नहीं है, आप सब मिट ही रहा है तो हरदम मिट रहा है। परमात्मा तो हरदम प्राप्त है और संसार हरदम अप्राप्त है, मिट रहा है। इसमें क्या उद्योग, ना मिट रहा है उद्योग करना है, ना उसको परमात्मा को लाना है, ना स्थापना करनी है। ऐसा दीख रहा है कि वो माम पशे सर्वत्र सर्वजी पशे रही तस्ते न प्रणय से हमें शुरू मैं अदृष्ट नहीं होता मेरे वो अदृष्ट नहीं होता सदा मेरी सर्वभूत स्थित यो माम भजे ते तो मात्र सर्वभूतों में स्थिर आत्मा है उसके एक स्थित है सर्वभूत स्थित यो माम भजे ते तो मात्र सर्वथा वर्तमान होगी समाचार होगी वो फिर कुछ भी बर्तन करे सब मेरे में बर्ताव करता है पहले घी निकालना होता है और निकाल कर अलग करना होता है फिर उसको उसी छाछ में तो मिलेगा नहीं अब दे ही नहीं बनेगा वो पहले था हो गया वो अब बस उसी छाछ में पड़े रहो दही नहीं बनेगा
एक तो परमात्मा के संकल्प होते हैं उस समय में और एक सबको परमात्मा देखने का भाव है ये दोनों अलग अलग है क्या
एक ही हो जाएगा उस परमात्मा की मुख्यता को संकल्प में भी परमात्मा की मुख्यता दृश्य में भी संकल्प की मुख्यता परमात्मा की मुख्यता सुनने में परमात्मा की मुख्यता स्पर्श में भी परमात्मा की मुख्यता चखने में परमात्मा मुख्यता सुगुण दुर्गुध में परमात्मा की मुख्यता गाली में और स्तुति में परमात्मा की मुख्यता आदर में निरादर में परमात्मा मुख्यता
पहले आपने जो बताया कि संकल्प मन की तो सुने जाए वो समझ में नहीं आया हमारे मुख क्या है
पहले आपने कहा ना वो भी एक मन की वृत्ति है परमात्मा का चिंतन करना
बिल्कुल वृत्ति है पर वृत्ति है वो वृत्ति परमात्मा खुद वृत्ति नहीं है उसमें से दोनों वृत्ति शांत हो जाएगी आप साफ परमात्मा रह जाएगा इस बार तो कोई साधन करो उसे हो जाएगा ये कर्म निरपेक्ष जल्दी सिद्धि होती है निर्कर्ण सापेक्ष उससे भी होगा सिद्धि समय लगेगा उद्देश्य जिसका परमात्मा है उसे ठीक है साधनों का भेद है कोई शुद्धि करता है कोई शुद्धि करता है ऐसे साधकों का भी भेद है अलग अलग किसी की वृत्ति कैसी हो रही किसी कैसी होती है अंत प्राप्ति एक अब कीर्तन सुना ले भाई
सूचना
सूचना सूचना।